हरे कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? तो बृहद भागवतमृतम आज ये बृहद भागवतमृतम सेमिनार का दूसरा दिन, हम थोड़ा कीर्तन करके हमारा ये क्लास शुरू करेंगे। कीर्तन का इम्पोर्टेंस क्या है आपको, आप सबको पता है? व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग द होली नेम? कलियुग का युग धर्म क्या है? चार युग हैं, चार युग का, चार प्रकार का युग धर्म है। वो है सतयुग का युग धर्म है ध्यान, त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ, द्वापर युग का युग धर्म है भगवान का अर्चन, मंदिर में भगवान का पूजा, और कलियुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। कृते जध्यायते विष्णु, त्रेतायाम जजते मखौ, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। अर्थात कृते जध्यायते विष्णु, धायन ध्यान है कृत अर्थात सत्ययुग का युग धर्म, त्रेतायाम जजते मखौ, मखौ अर्थात यज्ञेश्वर विष्णु के उद्देश्य यज्ञ करना ही त्रेता युग का धर्म है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग का युग धर्म है भगवान का पूजन परिचर्या, और कलौ तद हरि कीर्तनाद, भगवान का नाम कीर्तन ही कलियुग का युग धर्म है। हम जो कुछ करते हैं, मतलब हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो कुछ हम करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है ये हरिनाम कीर्तन और हरिनाम कीर्तन का प्रचार। आप में से कौन कौन विदेश गए हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, वहां हरिनाम होते देखा है? हाँ, हरिनाम देखे हैं। तो हरिनाम करना कैसे सिखा है उन्होंने? हाँ, नाश्ते गाते हैं, बल्कि कौन सिखाया? श्रील प्रभुपाद ने उनको सिखाया। सन 1965 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए थे, 70 साल की उम्र में, एकदम निश्चय अवस्था में, कुछ नहीं था उनके पास, और वहां जाके अकेला ये कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू किए थे, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किए थे, और 10 साल के अंदर सारा पृथ्वी भर कृष्ण भक्ति का प्रचार किए थे, और लाखों करोड़ों मनुष्यों को भगवान का भक्त बनाए थे। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका एक बहुत बहुत ही अंतरंग पार्षद को इस काम साधन करने के लिए भेजे थे, और भगवान का कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ, संभव हुआ। और ये कलियुग का जो प्रभाव जो है, आप तो जानते हैं कलियुग का विशेषता क्या है। हाँ, कलियुग का विशेषता क्या है? कलियुग है अधर्म का युग, अधर्म। वैसे धर्म ही स्थापन होना चाहिए, धर्म धर्म का आचरण होने से मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति होता है और भौतिक उन्नति भी होता है। वैसे वास्तविक रूप में। परंतु कलियुग का प्रभाव ऐसा है, यह इस युग है अधर्म का युग, तो इस युग में अधर्म का प्रभाव बहुत अधिक हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा? देखिए, ऐसे तो धर्म का ही प्रभाव होना चाहिए, धर्म का ही विस्तार होना चाहिए, धर्म का ही धर्म ही मनुष्य जीवन का आधार होना चाहिए। परंतु कलियुग में वैसा नहीं रहेगा, कलियुग में अधर्म का विस्तार होगा और उसके कारण कलियुग में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जैसे सबसे पवित्र स्थान जो है, उस स्थान सबसे अधर्म के प्रभाव का विस्तार होगा। जैसे देखिए, भारत ये धर्म क्षेत्र है, परंतु आज भारत में ही धर्म का अभाव हो गया है। और भारत में ही जो स्थान सबसे पवित्र था, जो स्थान सबसे समृद्धिशाली था, वो स्थान आज सबसे गरीब हो गए हैं। भारत सारा दुनिया पर अपना अधिकार विस्तार करके, भारत के राजाओं ने ही सारा पृथ्वी का ऊपर राज्य शासन करते थे। सारा पृथ्वी का राजा होता था भारत का ही राजा पहले। और आज भारत का अवस्था कैसा हुआ? मैं सुना कुछ साल पहले एक पिक्चर बना था, एक मूवी कोई गुजराती डायरेक्टर ने बनाए थे। उस फिल्म में भारत का हाल बताया गया था, वर्णन किया था भारत का हाल कैसे, भारत का राजनीतिक परिस्थिति या भारत का हाल आज कैसा हुआ है। और उसका लास्ट सीन में ये दिखाया गया कि भारत का ऑक्शन हो रहा है, और उस ऑक्शन में सदाम हुसैन, जॉर्ज बुश, मार्गरेट थैचर, दे आर ऑल बिडिंग भारत को खरीदने के लिए। तो वैसे ही हुआ है आज, है ना? कहा भारत सारा दुनिया भर उसका प्रभाव विस्तार करके सारा दुनिया में शांति और सुख का प्रतिष्ठा किया था, समृद्धि का प्रतिष्ठा किया था, करता था। परंतु आज भारत ही और सब सारे विदेशियों के कब्जा में आ गया है। और जो स्थान सबसे अपवित्र था, जो स्थान सबसे सबसे गिरा हुआ था, सबसे कठिनाई से भरा हुआ था, वो स्थान कैसा स्थान है? रेगिस्तान है ना? रेगिस्तान है इस पृथ्वी में सबसे मोस्ट डिग्रेडेड प्लेस, सबसे गिरा हुआ जगह है रेगिस्तान। और रेगिस्तान में किसका जन्म होता है? जो सबसे पापी है उसका जन्म रेगिस्तान में होता है। और आज देखिए, रेगिस्तान जो है मतलब अरब जो है, मध्य प्राच्य जो है, जो स्थान वो स्थान आज सबसे मशहूर हो गया, सबसे समृद्धि वहां है। वहां के लोग जहां रेगिस्तान में किसका जन्म होता है? जो खाने का नहीं है, पीने कुछ नहीं मिलता है, पीने का कुछ नहीं मिलता है, परंतु आज ही वहां के लोग सबसे धनी बन गया है। और इस धरती का संपदा आज क्या बना है? इस पृथ्वी का जो गंदगी जो है, और पृथ्वी का जो गार्बेज है, पृथ्वी का गार्बेज क्या है पता है आपको? ऑयल। और ऑयल ही आज दौलत बन गए हैं, लिक्विड गोल्ड, सोना। परंतु असल में है वो दुनिया, इस पृथ्वी का कीचड़। तो ऐसे देखिए सब कुछ कैसे उल्टा हो गया है। और भविष्य पुराण में यह भी वर्णन हुआ है, इस पृथ्वी का परिस्थिति ऐसा उल्टा हो जाएगा कि दिया भी, दिया का जो क्या बोलते हैं, जो वीक जो है, जो वीक दिया का जो वीक है, ऐसे तो दिया का वीक कैसे ऊपर की तरह रहता है, कलयुग में दिया का वीक नीचे तरफ, नीचे का तरफ हो जाएगा। ऐसे वीक दिया जलेगा। तो आप बल्ब को देखिए कैसा उसका वीक है। तो हमारे शास्त्र में जो कुछ बताया जाता है वो एकदम एकदम सत्य है, उसमें कोई भी गलती नहीं होता है। यद्यपि 5000 साल में इसका वर्णन हुआ है, भविष्यवाणी हुआ है, परंतु आज हम देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अधर्म की प्रभाव से। और इस अधर्म को, अधर्म आधार्मिक स्थिति का अगर हम संशोधन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, धर्म का स्थापना करना पड़ेगा। तो धर्म का स्थापना करन, कैसे संभव होगा, धर्म का पुनराय स्थापन करना, ये हरिनाम कीर्तन के द्वारा, युग धर्म के प्रभाव से ही धर्म का प्रतिष्ठा होगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखाए थे और हमको समझाए थे और खुद सारा दुनिया भर करके दिखाए थे कि यह हरिनाम का प्रचार ही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कर्तव्य है। हरिनाम का प्रभाव जितना बढ़ता जाएगा इस पृथ्वी का हाल उतना ही अच्छा होता रहेगा। तो हम थोड़ा कीर्तन करके हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे। Thank you. राम हरे राम, राम राम हरे राम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे राम हरे राम 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 हरे नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की श्री श्री बृहद भागवतामृतम की श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की Hare Krishna. So, into Brihad Bhagavatamritam. हम जब सेमिनार शुरू किया था हम एक हमारा असल उद्देश्य है ये सेमिनार की माध्यम आपको समझाना कि भगवत भक्ति क्या है और भगवत भक्ति का भगवत भक्ति संपादन करने से क्या लाभ होता है और कैसे ये भगवत भक्ति को आचरण या अनुष्ठान किया जा सकता है क्यों क्योंकि ये भगवत भक्ति ही जीवन का असल उद्देश्य है और जब हम ये शुरू किया था सेमिनार तो बहुत बच्चे लोग आए थे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स तो मैं सोचा कि ये चार सेमिनार मैं दूंगा इस साल में इस साल मतलब मार्च महीना तक मैं शायद मई में पहला सेमिनार किया था और उद्देश्य था कि ये सेमिनार का ये चार सेमिनार में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे उनको हम लंदन और ले जाएंगे लंदन लंदन और यूरोप पर असल में मैं ये इस सेमिनार को उद्देश्य केवल लंदन ही जाना नहीं ये सेमिनार का जो विषय है उसको अगर हम सही ढंग से समझ ले सकते हैं तो हम वैकुंठ लोक में भगवत धाम में जा सकते हैं लंदन क्या और ये उद्देश्य असल में यही है इस भौतिक जगत के परे जो भगवान का नित्य धाम है वो जो स्थान आनंदमय है और सच्चिदानंदमय है मतलब वहां मृत्यु नहीं होता है वहां सब नित्य है वहां सब चेतन है और वहाँ सब आनंदमय है। तो वो स्थान प्राप्ति ही जीवन का असल उद्देश्य होना चाहिए। और देखिए, असल में हम वहां से आए हैं, हम उस स्थान के रहने वाले हैं, परंतु एक भौतिक जगत में जैसे कोई कारागार में किसी को फेंका जाता है, कोई जो दंड जब जब कोई अपराध करते हैं उसको कैद किया जाता है और कैद खाना में उसको सजा मिलता है और अपना घर में ना वो नहीं रह सकता है, घर से उसको कोई और कहीं कैद खाना में लिया जाता है, वैसे ही हम इस भौतिक जगत रूप कारागार में हम दंड भोग रहे हैं, हम दंड भोग रहे हैं, परंतु हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ मालूम नहीं है कि हम दंड मिल रहा है। क्यों? क्यों? ये भगवान का जो माया शक्ति है, इस माया शक्ति का प्रभाव से ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम दंड भोग रहे हैं, हमें कष्ट मिल रहा है, ये हमारा ये अनुभूति उपलब्धि हमारा हो रहा है, परंतु हमें पता नहीं है कि इस दंड से मुक्त होकर हम कैसे एक स्वाभाविक स्थिति में वापस जा सकते हैं। और वो स्वाभाविक स्थिति वहां पर है जहां से हम आए हैं। जैसे मछली को अगर पानी से निकलकर स्थलभूमि में लाया जाए तो उसका हाल कैसा होगा? उस स्थलभूमि में उसको मछली को आप बहुत बड़े प्रासाद में रहने दीजिए, बड़े गाड़ी दीजिए, भले भले बहुत अच्छा खाना खाने को दीजिए, परंतु मछली का क्या कुछ उसका उसमें कुछ भोग या आनंद होगा? नहीं। परंतु जब मछली को जब हम फिर से पानी में वापस ले जाते हैं तब मछली उछलता रहता है आनंद में। वैसे ही जब तक ना हम हमारे असल स्थिति जहां है, जहां से हम आए हैं, वहां जब तक हम वापस नहीं जाएंगे तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा, तब तक हमें कष्ट ही भोगना पड़ेगा। ये भौतिक जगत दुखालयम अश्वाशतम है, ये एक दुख प्राप्ति के एक स्थान है, और अगर सुख कुछ थोड़ा कुछ मिल रहा है तो वो सुख स्थाई नहीं होगा, अश्वाशत है। तो ऐसे ये स्थान से हमें निकलना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य, असल उद्देश्य लंदन लेने का नहीं है, हमारा असल उद्देश्य है आपको गोलोक वृंदावन में वापस ले जाने का, और आप सबको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। और वो फाइनल परीक्षा कब होगा पता है आपको? फाइनल एग्जामिनेशन कब होगा? हाँ, मृत्यु के समय फाइनल एग्जाम्स होगा, मृत्यु के समय। मृत्यु के समय अगर हम भगवान को याद करते कर सकेंगे तो हम उनके पास वापस जा सकेंगे। और परीक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी करना पड़ता है। तो ये जीवन भर हमें तैयार करना, हमें वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा वो परीक्षा के लिए। तो अगर हम प्रस्तुति नहीं होगा तो क्या होगा? परीक्षा के समय हम वैसे विभ्रांत हो जाएंगे। होता है ना, जो लड़का या लड़की जो साल भर पढ़ाई नहीं करता है, परीक्षा के समय में क्या होता है? उसको डर के मारे बीमार आए हो जाता है और परीक्षा में फेल हो जाता है। और जो सारा साल भर जो बहुत अच्छा से अपने आप को तैयार करता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये जीवन का उद्देश्य है आगे बढ़ने का, और ये परीक्षा होगा शरीर छोड़ने के समय। तो ये जो प्रस्तुति, ये जो सेमिनार, उसका ही प्रस्तुति है। तो सेमिनार तो मैं केवल 3 दिन के लिए दे रहा हूं एक एक बार, परंतु हर सुबह शाम को हमारा मंदिर में पाठ होता है। आप लोग आइएगा, भक्तों के साथ रहकर, भक्तों के साथ मिलकर आध्यात्मिक मार्ग में आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए। आप में से तो बहुत सारे भक्त बन चुके हैं, और मैं, हम तो चाहते हैं सबको, आप सब आ जाए, आप ही केवल नहीं, और जो नहीं आए हैं वो सब भी आ जाए, क्योंकि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य वही है कि कैसे हम आप सबको भगवान के पास ले जा सकते हैं, कैसे आपको भगवान के बारे में आपको सुना सकते हैं और भगवान को कृपा लाभ करने का तरीका बता सकते हैं। एक समय मुझे भी पता नहीं था, मैं भी मूर्ख था, अब भी तो मैं मूर्ख ही हूं, परंतु मेरा परम पूज्य गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के सान्निध्य प्राप्त होने से, उनसे शिक्षा प्राप्त होने से कुछ अब तक अच्छा कुछ पता चला है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये पता चल गया है कि जीवन का असल उद्देश्य है भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ना, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना, और भगवान को लिए ही इस जीवन को निवेदन करना, और भगवान का महिमा प्रचार करने के लिए ही अपना सारे सामर्थ्य प्रयोग करना। ये करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम, उसका जो फल, उसका जो प्रभाव, वो खुद मैं खुद ही समझ रहा हूं, खुद अपना ही उपलब्धि हो रहा है कि इसका फल या सुफल कैसा है। कल मैं बृहद भागवतमृतम का पूर्व विभाग का 2 अध्याय का चर्चा किया। ये पूर्व विभाग का 7 अध्याय हैं, उसमें से पहला 2 अध्याय का ही थोड़ा सा विचार किया था, पर आज मैं क्या करूंगा, आज वो पूरा 7 अध्याय का ही बारे में बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि संक्षेप में ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये बृहद भागवतम में मृतम में क्या वर्णन हुआ है। कल मैं बताया था बृहद भागवतम मृतम में भक्ति का भिन्न भिन्न स्तर का वर्णन हुआ है। भक्ति का स्तर होता है, और ये इसका विचार कौन कर रहे हैं, नारद मुनि ने ढूंढ रहे हैं कौन भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त कौन है। ऐसे भक्त को पहचानना बहुत मुश्किल है। भक्त जो है वो भक्ति, जितना ही भक्ति का प्रभाव, भक्ति का अनुभूति जितना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही उनमें दैन्य भाव आएगा। ऐसा नहीं जो बड़ा भक्त है वो बोलेगा मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, असल में जो सबसे छोटा भक्त है वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, और जो सबसे बड़ा भक्त जो है वो सोचते हैं कि मैं तो भक्त बन नहीं सका। भक्ति का प्रभाव ऐसा ही होता है, और ये कोई कृत्रिम व्यवहार नहीं है। दिस इज नॉट एन आर्टिफिशियल जेस्चर, ये उसका अनुभूति का ही ऐसा प्रकाश होता है। जितना ही हम भगवान के शरण लेते हैं, जितना ही हम भगवान का भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं, जितना ही हम भगवत भक्ति प्राप्त होते हैं, उतना ही हमें ऐसा अनुभूति होगा कि कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और सबको मिल गया है परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त है प्रबोधानंद सरस्वती, दक्षिण भारत के बहुत बड़े पंडित थे, रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे प्रबोधानंद सरस्वती। और चैतन्य महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त होने से चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे और महाप्रभु के साथ ही रहते थे। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने कह रहे हैं, वंचितोष्मि 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 न संशय विश्व गौर रसे मग्नं स्पर्शम अपि माम न भवेत। मैं वंचित, वंचित का मतलब नहीं मिला, आई बीन डिप्राइव्ड। उसका शुद्ध हिंदी क्या होगा वंचित शब्द? अभाव, अभाव, नहीं मिला, मुझे नहीं मिला है, वो वस्तु ने मुझे नहीं मिला है। वंचित अस्मि, मैं वंचित हुआ है, मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। सारा जगत श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मग्न हो गए हैं। विश्व गौर रसे मग्नम, भगवत प्रेम भगवत भक्ति के प्रभाव से सारा दुनिया मग्न हो गए हैं। परंतु उसका वो जो भक्ति का जो प्लावन, कृष्ण प्रेम प्रेम का जो प्लावन बह रहा है, उसका स्पर्श भी मुझे नहीं मिला। सारा दुनिया डूब गए हैं परंतु मुझे उसका स्पर्श भी नहीं हुआ। भक्त का मनोभाव ऐसा ही होता है और इस मनोभाव का ही प्रकाश इस बृहद भागवतामृतम में बहुत सुंदर रूप से हुआ है। जैसे काल मैं बता रहा था, साधुओं ने प्रयाग में मिले थे माघ के माघ महीना में पूर्णिमा के समय, उन्होंने सब प्रयाग में नहाकर इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। वापस में भगवान की महिमा, भक्ति का महिमा चर्चा कर रहे थे। तो एक दूसरे को कहने लगा कि आप ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त हैं, आप भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। यही है भक्तिक भक्तों का मनोभाव। जहां वो भगवान का भक्ति का प्रकाश देखते हैं तो वहां ही उनका शर झुक जाता है, उनका शीर झुक जाता है और उनको प्रणाम करके अपना उनका महिमा कीर्तन करते हैं कि आप ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तो वहां नारद मुनि भी थे, तो नारद मुनि में सोचने लगा, असल में कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है? सभी तो कहते हैं दूसरे को आप ही सबसे श्रेष्ठ भक्त है, परंतु असल में भगवान का श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो नारद मुनि ये भक्तों का कौन, ऐसे नहीं उस समय नारद मुनि ऐसा नहीं सोचा कि मैं ढूंढ के बताऊंगा और ढूंढ के पहचानूंगा कौन भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, ऐसा मनोभाव नहीं था। परंतु जैसे एक दूसरे को कह रहे थे कि आप सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त हैं, तब नारद मुनि देखा कि वहां एक ब्राह्मण ने आकर बहुत सुंदर ढंग से भगवान का पूजा कर रहे हैं, इतना भक्ति से इतना निष्ठा के साथ भगवान का पूजन कर रहे थे। नारद मुनि आश्चर्य हो गए और सोचने लगा कि ये ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। और उनके पास जाकर नारद मुनि ने उनका महिमा गाना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया कि आप ही भगवान का कृपा प्राप्त का की कृपा सही कृपा प्राप्त हुए हैं, आप ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तब ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता के साथ नारद मुनि को बोला, मुझ में क्या भक्ति आप देखे, मैं तो सिर्फ भगवान का पूजा कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, भगवान को पूजा करना ही मेरा कर्तव्य है और उसका उस इसलिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं। असल में भक्ति क्या है हमने? परंतु दक्षिण भारत में एक राजा है, उन राजा ने भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। उनका कहने का मतलब ये था, देखिए मैं तो ब्राह्मण हूं, भगवान का पूजा करना भक्ति करना मेरा मेरा नित्य कर्म है, मेरा कार्य है, कर्तव्य है, ये मेरा वृत्ति है। परंतु जो राजा है वो इतना वैभवशाली होने से भी, इतना बड़े राजा होते हुए भी वो भगवान का इतना भक्ति करते हैं। उनका ऐसे उन्होंने बताने शुरू किया कि ये राजा ही भगवान का असल भक्त है। तो ये सुनने के पश्चात नारद मुनि वो राजा के पास गए दक्षिण भारत में और देखा राजा का भक्ति के प्रभाव से राज्य ऐसे एक दिव्य रूप प्राप्त हो गया था। वहां सब भगवान का भक्त है उस राज्य में, और किसी को किसी प्रकार का भी अभाव नहीं है, परंतु भगवत भक्ति के प्रभाव से सबका इतना दौलत प्राप्त हुआ है, हर जगह शांति और समृद्धि का प्रकाश हुआ है। और वहां का परिवेश, वहां का स्थिति इतना सुंदर है कि वहां आने से ही मालूम होता है कि ये भौतिक जगत का कोई स्थान नहीं है। भक्ति के प्रभाव से इस स्थान आध्यात्मिक जगत का रूप प्राप्त हो गया था। तो राजा के पास जाकर नारद मुनि ने जब उनको महिमा कीर्तन करना शुरू किया कि आप कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, आप ही भगवान का श्रेष्ठ कृपा प्राप्त है, तब राजा ने बहुत खेद के साथ कहने लगा, मुझ में क्या भक्ति आप देखे, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मेरा जीवन केवल कुछ साल के लिए है और मेरा वैभव भी आप जो देख रहे हैं वो क्या है, तो थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ है, परंतु असल में भगवान का कृपा प्राप्ति स्वर्गलोकवासी को हुआ है, देवताओं को, उनका आयु कितना दीर्घ है, भगवान उन पर कितना कृपा किए हैं, और उन सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं इंद्र, देवराज इंद्र, और इंद्र का भक्ति के बारे में उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, इंद्र कितना महान भक्त है। तो देखिए यहां उनका कहने का मतलब यह है कि जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है उनके लिए भगवान भक्त बनना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो जब भक्त बन जाते हैं तो उस भक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे आप शायद कागज में पढ़े होंगे कि हमारे संस्थान के साथ हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रपौत्र, ठीक है। तो हमारे संस्थान में हजारों अमेरिकन भक्तों हैं, परंतु वो हेनरी फोर्ड के बारे, वो जो उसका नाम है अल्फ्रेड फोर्ड, अल्फ्रेड फोर्ड के बारे में आप सब क्यों देखते हैं, सुनते हैं और आश्चर्य होते हैं? क्योंकि इतना धनी होते हुए भी वो भगवान का भक्त बना है ना। ये बड़ी बात है कि इतना धनी होते, इतना समृद्धशाली होते हुए भी वो भगवान का भक्त बने। तो वैसे ही जब राजा ने बताने लगा कि देखिए इंद्र इतना वैभवशाली है, उसका इनका इतना क्षमता है और वो इतना भगवत भक्त है, तो इस ऐसे इंद्र के बारे में जब बताया तब नारद मुनि राजा को प्रशंसा करते हुए वहां से इंद्र स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में इंद्र को वैभव दर्शन करके आश्चर्य होकर इंद्र का महिमा कीर्तन करना शुरू किया। तब इंद्र ने उनको बताने लगा कि हम में क्या भक्ति आप देख रहे हैं, मैं क्या हूं और मुझ में भक्ति भी क्या है, परंतु मैं भगवान के चरण में कमलों में कितने अपराध करता हूं और अपने भोग के लिए भगवान को कितना तकलीफ दे रहा हूं। जब बलि ने मेरा राज्य छीन लिया था तब मेरे माता और पिता बहुत तपस्या किया, व्रत किया करके भगवान को प्रसन्न किया और उनके पास बर मांगा कि आप मेरा पुत्र का राज्य वापस करवा दीजिए। तभी केवल भगवान वामन देव के रूप में आकर, देखिए कितना कठिनाई उनको लेने पड़ा, मेरे लिए मेरा राज्य लौटाने के लिए उनको वहां से वैकुंठ लोक से यहां आने पड़ा और आकर बलि को प्रताड़ना करना पड़ा, झूठ कर कहकर बलि को उनका राज्य से वंचित करके छीन कर वो हमको प्रदान किया। तो ये क्या भक्ति का लक्षण है? भगवान के पास कुछ प्राप्ति के लिए क्या कोई भक्ति करता है? नहीं, भक्ति जो है, भक्ति का मतलब है प्रेम, प्यार। जब हम किसी को प्यार करते हैं तब क्या उनसे हम कुछ मांगते हैं? नहीं, जब हम प्यार करते हैं तब उनको हम देते हैं, मांगते नहीं है, देते हैं। ये है प्यार का स्वरूप। तो आप बताइए, मैं क्या भक्त हूं? असल में भगवान का कृपा प्राप्त है ब्रह्मा जी, आपका पिता। और तब इंद्र ने ब्रह्मा जी का महिमा कीर्तन करना शुरू किया। ब्रह्मा जी कितना महान है और ब्रह्मा जी भगवान का कितना प्यारे हैं और ब्रह्मा जी को भगवान का कृपा कितना सुंदर रूप से मिल रहा है। और असल में ब्रह्मा जी के साथ भगवान का कोई अंतर नहीं है। तो ये सुनकर नारद मुनि इंद्रदेव से विदा लेकर सत्यलोक में गया। ब्रह्मा जी नारद मुनि का पिता है, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी का महिमा कीर्तन करना शुरू किया और कीर्तन करते हुए उन्हें बताया कि आप भगवान से अभिन्न है। ये सुनकर ब्रह्मा जी का बहुत गुस्सा हुआ। ब्रह्मा जी तो पहले तो अपना आठ हाथ से अपना आठ कान ढाक लिया, ढाक के बोला, देखो नारद, ऐसी बात कहना नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। भगवान को समकक्ष कौन हो सकता है? मैं तो केवल भगवान का दास हूं और तुम कह रहे हो मैं भगवान से अभिन्न हूं। मैं तुम्हारा बचपन से ही मैं तुमको बताया था कि ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। आपको याद है ये ब्रह्मा जी, देखिए नारद है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कार्य में लिप्त हुए थे भगवान के निर्देश के अनुसार, तब ब्रह्मा जी सोचा मैं ये काम तो मेरे लिए अकेला संभव नहीं होगा, तो मेरा कुछ हेल्प का जरूरत है, सहाय चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपना मन से चार पुत्र का उत्पन्न किए थे। वो चार पहले चार मानस पुत्र ब्रह्मा जी का है, चार कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। पर ब्रह्मा जी जब उनको बताया कि ये सृष्टि कार्य में उनको सहयोग देने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोला ये इस भौतिक जगत के कोई काम में हम लिप्त होना नहीं चाहते हैं, पिताजी क्षमा कीजिए, इस काम हम नहीं कर सकेंगे। तब ब्रह्मा जी का मन में क्रोध हुआ, ये मेरा पुत्र है परंतु ये मेरा वाणी, मेरा कहना सुन नहीं रहा है। तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मेरा पुत्र है, इस पर क्रोधित होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का क्रोध से क्या होगा, ध्वंस हो जाएंगे। तो ये सोचकर ब्रह्मा जी ने अपना क्रोध संवरण किया, परंतु संवरण करते हुए भी वो क्रोध उनका भ्रू जुगल के मध्य से निकला था और वैसे ही रुद्र का उत्पत्ति हुआ। तो तब ब्रह्मा जी और 10 पुत्र का मन से, अपना मन से 10 पुत्र का उत्पन्न किया। देखिए सृष्टि का ये भी एक विचार या विषय है। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? भगवान का नाभि कमल से, डायरेक्ट भगवान से ब्रह्मा जी आए थे। और ब्रह्मा जी जो संतान उत्पन्न किए थे, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ था? ब्रह्मा जी का पत्नी के द्वारा नहीं हुआ, मन से। ये ब्रह्मा जी का क्षमता है, अपना मन से अपना पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 10 पुत्र में, वो 10 पुत्र में से 9 पुत्र थे प्रजापति, जो प्रजा सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को सहयोग दिए थे। और सबसे कनिष्ठ जो थे वो थे नारद मुनि। परंतु नारद मुनि भी वो ये प्रजा सृष्टि में उनका मन नहीं था, वो भी उनका पहला भाई के जैसा था, बड़े भाई जैसे उदासीन थे। बचपन से उनका ये हुआ कि हम ये काम मेरे लिए नहीं है। और ब्रह्मा जी भी सोचा ठीक है, ये सबसे छोटा लड़का है, उसको उसको जाने दो। और नारद मुनि शुरू से ही भगवान के भक्त थे। भगवान का भक्त मतलब भक्ति का तब तक प्रकाश नहीं हुआ था। देखिए इस जगत में जब हमारा जन्म होता है वो अज्ञान में ही होता है। ब्रह्मा जी का भी उत्पत्ति से अज्ञान में ही थे, ब्रह्मा जी को पता नहीं था। यद्यपि ब्रह्मा जी भगवान का नाभि कमल से प्रत्यक्ष रूप से आए थे, डायरेक्टली भगवान से आए थे, फिर भी उनको पता नहीं था कि वो कौन है और उनको क्या करना चाहिए। इस भौतिक जगत में सबका स्थिति ही ऐसा है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं, स्वतः ही नहीं हो मिलता है, किसी से इसको ग्रहण करना, प्राप्त होना होता है। और जो देते हैं, जिसके पास इस ज्ञान है, उन्होंने ही केवल दे सकते हैं, और वो उनको ही गुरु कहा जाता है। और गुरु कौन है? जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, भगवान के बारे में जो जानते हैं वही केवल गुरु बन सकते हैं। जिस भगवान के बारे में जो नहीं जानते हैं वो कभी गुरु नहीं बन सकते, मतलब आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकते। तो गुरु का कर्तव्य है भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करना, और गुरु से ही इस भगवत तत्व ज्ञान का प्राप्ति होता है। तो पहले जैसे ब्रह्मा जी भी अज्ञान में थे, नारद मुनि भी अज्ञान में थे, और नारद मुनि सोचते थे कि ब्रह्मा जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी ही तो श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने सोचते थे, नारद मुनि सोचते थे कि उनका पिता ब्रह्मा ही ये सारे संसार के मूल कारण है, सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी ही है। परंतु एक दिन नारद मुनि देखा ब्रह्मा जी वैसे ध्यान मग्न हुए हैं, होकर बैठे हैं, उनके आंखों से आंसू बरस रहा है, उनका सारा शरीर रोमांचित हुआ है और सारा शरीर में कंपन हो रहा है। तो ये देखते हुए नारद जी ने उनको पूछा, पिताजी जब उनका जब होश में आए, मतलब उस ध्यान मग्न अवस्था से जब वापस आए, तब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछा, पिताजी मैं तो सोचता था कि आप ही सबसे महान हैं, परंतु किसके बारे में सोचने के पश्चात आपको ऐसा अनुभूति हुआ कि आपको आंखों से आंसू बह रहा था, आपका शरीर रोमांचित हुआ था, शरीर कंपन हो रहा था? तब ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के बारे में बताया। तो ऐसे ही भगवान के बारे में ब्रह्मा जी से ही नारद मुनि का इस ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस कारण नारद मुनि का गुरु है ब्रह्मा जी। ये जो परंपरा जो है ब्रह्मा जी से जो परंपरा है वो है श्री कृष्ण से ब्रह्मा। आपको याद है ब्रह्म संहिता में इसमें का वर्णन किया था कैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस ज्ञान प्रदान किए थे, दिव्य ज्ञान, गायत्री मंत्र प्रदान करके। उस गायत्री का ध्यान करने से ब्रह्मा जी का हृदय में इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को इस ज्ञान प्रदान किए थे। नारद मुनि इस ज्ञान को दिए थे व्यासदेव को, व्यासदेव दिए थे मध्वाचार्य को। ऐसे ही ये परंपरा है। तो भगवान के बारे में ज्ञान नारद मुनि को ब्रह्मा जी से ही मिला था। तो उसके पहले नारद मुनि सोचते थे कि ब्रह्मा जी ही भगवान है। तो इस कारण ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि तुम बचपन से ही, मैं तुमको बताया था कि मैं भगवान नहीं हूं और भगवान के बराबर भी मैं नहीं हूं, मैं केवल भगवान का दास हूं। तो उसके पश्चात नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान का श्रेष्ठ भक्त है महादेव शिव जी। और शिव जी क्यों भगवान का भक्त है इसके बारे में भी ब्रह्मा जी विस्तृत रूप से वर्णन किए। तब नारद मुनि कैलाश में गए, महेश धाम। शिव जी का जो धाम है वो कहाँ है? शिव जी का स्थिति इस भौतिक जगत में नहीं है, शिव जी का स्थिति भौतिक जगत के परे है। गोलो को नाम ने निज धाम ने तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। ये देवी धाम है इस भौतिक जगत, ये जगत देवी या महामाया के स्थान है। और इस भौतिक जगत के परे हैं, इस देवी धाम के परे हैं महेश धाम, शिवजी का धाम। शिवजी के धाम के परे हैं हरि धाम या वैकुंठ लोक, और वैकुंठ के भी परे है वृंदावन, गोलोक अर्थात गोलोक। गोलोक नाम ने निज धाम ने तले च तस्य देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु। तो ये नारद मुनि हाँ महेश धाम में गए, शिव जी के धाम में गए। जब नारद मुनि वहां पहुंचा तो देखा शिव जी ने शंकरशन का पूजा करने के पश्चात भाव से विभोर होकर नाच रहे हैं और भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, और उनके जो पार्षदों हैं उन्होंने मृदंग करताल या वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, और शिवजी एकदम मगन होकर भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं। तब नारद मुनि ने जब ब्रह्म शिवजी जब उनका नाच समाप्त किया तब नारद मुनि को देखकर उनको बहुत प्रसन्नता हुआ। बोले नारद तुम कब आया और बताओ क्यों आए हो। तो नारद मुनि तब बताना शुरू किया कि शिव जी कितने महान भक्त हैं, भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, भगवान का श्रेष्ठ कृपा प्राप्त है शिव जी। ये कहकर नारद मुनि शिव जी को पैर चरण स्पर्श करने को गया और शिव जी नारद को उठाकर आलिंग गले लगा लिया। तब नारद मुनि ने शिव जी का महिमा वर्णन करते हुए शिव जी को बताया कि आप सारे संसार के मालिक हैं, ईश्वर हैं। तब शिव जी उनका कान बंद कर दिया, बोला कि नारद तुम क्या कह रहे हो, मैं कैसी ये संसार के मालिक हूं, तुमको क्या हुआ, तुमको पता नहीं है सारे संसार के असल मालिक कौन है, सारे संसार के मालिक तो भगवान भगवान है। और कभी कभी मैं मुझ में ऐसा मनोभाव आ जाता है, मैं अहंकार की द्वारा प्रभावित होता हूं और तब मैं सोचता हूं कि हाँ मैं ही सारे संसार के मालिक हूं, हमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। यद्यपि भगवान को मैं जानता हूं परंतु कभी कभी इस भौतिक जगत के संस्पर्श में आने से हमें ऐसा मालूम होता है कि ये जगत मेरा ही है, और असल में है भी है ना। शिवजी एक दृष्टिकोण से शिवजी ही ये संसार के मालिक है। क्यों? क्योंकि इस संसार ये भौतिक जगत किसका है, जैसे मैं बताया देवी का है, महामाया का है, और शिवजी कौन है, महामाया का पति है। तो अपना पत्नी का प्रॉपर्टी तो पति का भी तो इस दृष्टिकोण से शिवजी भी ये संसार के मालिक हैं। और शिवजी ने बताना शुरू किया, देखो इस भावना से भावित होकर कभी कभी मैं भगवान से भी मेरा संघर्ष होता है। और तब बताया कैसे बानासुर की कहानी सुनाया, पता नहीं है तुमको नारद, बानासुर जब कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध को बंदी कर लिया तब कृष्ण का साथ बानासुर का लड़ाई हुआ, और बानासुर के उस लड़ाई में बानासुर मेरा साहज प्रार्थना किया और मेरा भक्त होने के कारण मैं बानासुर का पक्ष लिया था, और तब भगवान बानासुर को परास्त किया और हमको भी इतना परेशान किया तो मुझे होश में लाया। तब मेरा जो वाराणसी, मेरा जो स्थान है इस जगत में, उसको भगवान का सुदर्शन चक्र उसको जला दिया था, मेरा रहने का कोई स्थान नहीं था। तो परंतु जब भगवान देखा कि बानासुर मेरा भक्त हैं तो बानासुर को हत्या कर न करके बानासुर को अपना स्वरूप दे दिया, बानासुर को वैकुंठ रूप प्रदान किया था भगवान, केवल मेरा भक्त होने के कारण। देखो भगवान कितना महान है, मैं भगवान को भूल जाता हूं, जो मेरा जो ईश्वर भाव, मेरा ईश्वर भाव के कारण मैं भगवान को पहचाना नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीला विलास करने कर रहे थे तो मैं उनको पहचाना नहीं और उनके साथ मेरा संघर्ष हुआ था, क्योंकि मैं उनको एक साधारण व्यक्ति समझा, साधारण मनुष्य समझ के रूप में दर्शन किया। तो ऐसे भगवान, मैं जब गलती करता हूं भगवान हमको होश में लाते हैं। और तुम कह रहे हो कि भगवान की कृपा से हमें बड़ देने का अधिकार मिला है, मैं बड़ दे सकता हूं, परंतु देखो मैं क्या करता हूं, मैं सब ये जो असुर हैं, जो भगवत विद्वेषी हैं, भगवान का भक्त का विद्वेषी हैं, वो जब मेरा पूजा करता है और मेरा मैं उनके ऊपर प्रसन्न होकर और कुछ सोच विचार किए बिना उनको बड़ दे देता हूं, और बड़ प्राप्त होकर वो लोग क्या करते हैं, भक्तों के ऊपर अत्याचार करता है। जैसा मेरे जैसा ब्रिकासुर बानासुर, ऐसे दृष्टांत दिया। और कभी कभी इस असुरों ने हमसे बड़ प्राप्त होने के बाद हम पर ही हमें हमला करता है। जैसा भस्मासुर हमसे बड़ मांगा कि जिसके सर पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और जब मैं वो बड़ दिया तो वो बोला ठीक है, ये सही बड़ मिला या नहीं मैं परीक्षा करूंगा, और करने के लिए मेरा सर पर ही हाथ रखने का प्रबंध किया, तो मैं तो भागा। तो ऐसा उल्टा सीधा बड़ देने से मेरा ही तकलीफ होता है। तब जब कोई सहारा नहीं था तब मैं भगवान को शरण लिया और भगवान आकर हमें रक्षा किया। एक बालक के रूप में भगवान आकर बानासुर को पूछा है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला, मैं देखो शिव के पीछे कर रहा हूं। क्यों शिव के पीछे कर रहा हूं? क्योंकि वो हमको बर दिया है कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो ये मैं परीक्षा करना चाहा तो हमसे भाग रहा है। तो बोला वो कि ऐसा बढ़ के कोई दे सकता है? वो तुमको मूर्ख बनाया है। तो वो ये कभी नहीं हो सकता है, तुम अपना सर पर हाथ रख के देखो। तब वो भगवान की माया से प्रभावित होकर अपना सर पर ही हाथ रख दिया, बस वो भस्म हो गए। तो ऐसे शिवजी बताने लगा कैसे उनका कभी कभी तकलीफ होता है। ऐसे बताने के बाद शिवजी ने नारद को बोला, देखो नारद, भगवान के असल भक्त हैं वैकुंठवासी, वैकुंठ में जो रहते हैं वही असल भक्त हैं, क्योंकि उनको भगवान के भक्ति के प्रभाव से उनको सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो चुका है। उनका उन्होंने एक भौतिक जगत के परे हैं, भक्ति के कारण उन्होंने भगवान के पास रहते हैं, भगवान के पार्षद बन गए हैं। तो ऐसे वर्णन करने लगा कि जो बैकुंठवासी जो है वो बैकुंठ पार्षद ने ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तो पार्वती ने बताया हाँ बैकुंठ, परंतु बैकुंठ वासियों में से सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देवी। और ये कहकर पार्वती ने लक्ष्मी देवी के गुण का वर्णन करना शुरू किया। तब नारद मुनि बैकुंठ जाने का प्रबंध किया। तब शिव जी ने बताया देखो तुम बैकुंठ क्यों जा रहे हो, तुम क्या भूल गए हो कि भगवान द्वारका में लीला विलास कर रहे हैं। भगवान अब द्वारका में है और वहां रुक्मिणी ही महालक्ष्मी है। उसके पश्चात शिव जी ने नारद को बताया देखो अब मैं तुमको एक बहुत ही गहरा बात बताऊंगा, असल में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है प्रह्लाद, क्योंकि भगवान जब क्रोधित हुए थे हिरण्यकशिपु को संहार करने के पश्चात, भगवान का इतना क्रोध हुआ था हिरण्यकशिपु के कारण कि उस क्रोध को कंट्रोल कर बुझाने के लिए और कोई भी भगवान के पास जाने का साहस नहीं किया, मैं भी नहीं जा सका, ब्रह्मा भी नहीं जा सका, जैसे कि लक्ष्मी देवी भी उनके पास नहीं जा सका। परंतु जब प्रह्लाद भगवान के पास गया तो प्रह्लाद को देखते हुए ही भगवान के सारे क्रोध का उपशम हो गया था और अपना गोद में उसको प्रह्लाद को बैठाकर अपना स्नेह वर्षण करने लगा। और देखो प्रह्लाद इतना भक्त है, भगवान प्रह्लाद को जब बर देने को चाहा, मुक्ति तक भी प्रह्लाद को देने के लिए भगवान उस समय प्रस्तुत थे, परंतु प्रह्लाद क्या मांगा, प्रह्लाद भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगा। तो ये कहते हुए शिवजी ने प्रह्लाद महाराज के भक्ति के महिमा का वर्णन किया। तो नारद मुनि प्रह्लाद महाराज को दर्शन करने को गया। तो जाकर जब प्रह्लाद महाराज को महिमा कीर्तन करने लगा, उनका भक्ति का वर्णन करना शुरू किया और कैसे उन्होंने भगवान का कृपा प्राप्त हुए हैं ये वर्णन करना शुरू किया, तब प्रह्लाद महाराज ने नारद मुनि के बहुत विनम्रता के साथ बताया मैं जो कुछ किया हो तो बचपन में वो बच्चा जैसा करता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है क्यों कर रहा है, वैसे ही मैं अपना बचपन में ऐसा कुछ भगवान के प्रति थोड़ा सा आसक्ति मेरा हुआ था, परंतु असल में भक्ति तो मेरा नहीं है। देखिए भगवान को सेवा करने का कोई अवसर हमें नहीं मिला, भगवान को स्मरण कर रहा था, भगवान को महिमा को जो मैं श्रवण किया नारद आप ही से, जब मैं मेरा माँ की गर्भ में था, नारद मुनि के पास ही प्रह्लाद महाराज भगवान के महिमा श्रवण किए थे, जब उन्होंने अपने माँ के गर्भ में थे, कायधु था हिरण्यकशिपु का पत्नी, और हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए चले गए थे तब प्रह्लाद उनका मां का गर्भ में थे। नारद मुनि कायधु को अपना आश्रम में स्थान दिया था और नारद मुनि जो उपदेश देते थे प्रह्लाद अपना मां के गर्भ में रहकर वो उपदेश सुनते थे और उनका तब से ही उनमें भगवत भक्ति का प्रकाश हुआ था। तो जो कुछ मैं आपके पास सुना था उसका ही मैं स्मरण कर रहा था, इसके अलावा और तो कुछ मैं नहीं किया। परंतु जो असल भक्त है भगवान का सेवक है, भगवान को सेवा करते हैं, केवल स्मरण से भक्ति नहीं होता है, सेवन से ही भक्ति का प्रकाश होता है। और देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, परंतु आप विचार कीजिए हनुमान के, हनुमान जिस जैसा भगवान को सेवा किया उसके तुलना से मैं क्या किया था, कुछ भी नहीं किया। देखिए हनुमान भगवान के लिए कितना कुछ किया था, कितना बड़ा महान सेवक है हनुमान। तो ये कहते हुए उन्होंने हनुमान का गुण वर्णन करना शुरू किया, कैसे उन्होंने रामचंद्र का सेवा किया, कैसे सीता देवी के उद्धार किया, रावण को स्वर्ण लंका को जला दिया, कैसे समुद्र को बंधन किया, ये सारे बताने लगा कि हनुमान ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तब नारद मुनि हनुमान के पास गए। जब नारद मुनि ने हनुमान को भक्ति का गुण कीर्तन करना शुरू किया, तब हनुमान रोने लगा, बोला क्यों आप ऐसे ही जो मेरा हृदय जो दग्ध हो रहा है उसमें फिर आग जला रही है। मैं अगर भगवान का भक्त होता, अगर भगवान हमें कृपा करते थे, तो क्यों हमको छोड़कर चले गए और हमें दर्शन नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि भगवान में भगवान अपना कृपा हम पर वर्षण कर रहे हैं, यह क्या कृपा का प्रकाश है? असल में भगवान का भक्त है पांडव। पांडव नहीं, देखिए पांडव के साथ भगवान हर समय रहते हैं और उनके लिए भगवान कितना कुछ कर रहे हैं, कितने विपत्ति में उनको उद्धार किया और हर समय उनके रक्षा कर रहे हैं, ये कहकर पांडवों का गुण का कीर्तन करना शुरू किया हनुमान ने। तब नारद मुनि पांडव को दर्शन करने गया हस्तिनापुर में। तो जब उनके पास जाकर उनका महिमा कीर्तन शुरू किया, तो पांडव ने उनको बताया, युधिष्ठिर महाराज ने उनको बताया, हे नारद मुनि, आप क्या कह रहे हैं कि आप हम भगवान की कृपा प्राप्त हैं, कृपा पात्र हैं? असल में भगवान का कृपा पात्र हैं जादव यदु ने, क्योंकि भगवान उनके उनके परिवार में पैदा हुए हैं, भगवान उनके साथ हर समय रहते हैं और भगवान उनको हर समय रक्षा करते हैं, भगवान हर समय उनको संग देते हैं और उन्होंने भगवान का इतना नजदीक है कि उनको पता नहीं है कि भगवान भगवान है। वो सोचते हैं कि भगवान अपना वंश का व्यक्ति है। तो ये सुनने के पश्चात नारद मुनि द्वारका में गए, तो वहां देखा जादुओं ने भगवान का महिमा स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो जब उन्होंने नारद मुनि ने जादुओं को बताया कि वही श्रेष्ठ भक्त हैं, तब जादव ने बताया नहीं, श्रेष्ठ भक्त है उद्धव और उद्धव का गुण कीर्तन करना शुरू किया। तब नारद मुनि उद्धव का दर्शन करने के लिए अंतपुर में गया, पूछा कहाँ है उद्धव। तब नारद मुनि जब उद्धव को दर्शन करने के लिए अंतपुर में गए, तब देखा बहुत सब बहुत उद्विग्न होकर बहुत चिंता में पड़े हुए हैं सब, क्योंकि श्री कृष्ण अब तक, वासुदेव अब तक नींद से जगा नहीं, अपना बिस्तरा में ही लौटकर चादर से सारा शरीर ढाक कर वो सोए हुए हैं। यद्यपि काफी लेट हो गया है, तब तक उठ नहीं रहा है। तो वहां सब बहुत चिंता में थे। तो नारद मुनि के तब नारद मुनि देखा कि उन्होंने सब सोच रहे हैं क्या हुआ। तब रुक्मिणी ने बताया कि भगवान ऐसे ही दिन और रात हर समय वृंदावन के बारे में सोचते हैं। भगवान का शरीर यद्यपि द्वारका में है, परंतु उनका मन हर समय वृंदावन में ही रहता है। दिन की वक्त उन्हें वो बहुत एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। एब्सेंट माइंडेड का हिंदी क्या है? अन्नमनस्क रहते हैं। और रात को नींद में पुकारते हैं ब्रजवासियों के नाम लेकर, गायों को नाम लेकर, ब्रज गोपिया का नाम लेकर पुकारते हैं। उससे पता चलता है कि रात को वहां चले जाते हैं। दिन को भी मन वहां रहता है और रात को भी मन वहां रहता है। तब बलराम बताया ये कृष्ण का अभिनय है, कपट है, अभिनय है। अगर कृष्ण का मन द्वारका वृंदावन के लिए उतना ही अगर उसका उत्सुकता है तो जाता क्यों नहीं वहां? इतना दिन हो गए हैं वृंदावन वापस नहीं गया। तब ये सुनकर कृष्ण और रोने लगा कि मैं तुमको पता नहीं है ब्रजवासियों के लिए मेरा कितना कष्ट होता है। और ये कहते हुए कृष्ण मूर्छित हो गया, अचेतन हो गया। तो कृष्ण जब अचेतन हो गया तो सब रोने लगा। और उसका उनका रोना रोने का शब्द सुनकर सुधर्मा सभा से उग्रसेन, सूरसेन प्रभृति सब आ गए वहां। क्या हुआ, क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी भी वहां आए और ब्रह्मा जी ने बताया कि कृष्ण को नव वृंदावन में ले जाओ। विश्वकर्मा ने नव वृंदावन बनाया और गरुड़ को बुलाया और कृष्ण को गोप वेश, ब्रजवासी वृंदावन में कृष्ण का जो वेश है वो द्वारका का वेश से भिन्न है। वहां कृष्ण ग्वाल बाल हैं, तो वैसे गोप वेश पहनाया और गरुड़ से बलराम के साथ गरुड़ से कृष्ण को भेजा नव वृंदावन में। तब नव वृंदावन में द्वारका के पास एक स्थान में विश्वकर्मा ने वृंदावन का ही अनुरूप एक स्थान बनाया। वहां सबका मूर्ति है। तो तब बलराम कृष्ण को बोला, हे कृष्ण उठो उठो, बहुत देर हो गए हैं। तब कृष्ण जाग उठा और बलराम को बोला, हे बलराम, कल मैं एक सपना देखा, मैं एक सपना देख रहा था कि मैं कहीं गया एक स्थान में और वहां मैं राजा बन गया और मेरा 16,000 महिषी के साथ मेरा विवाह हुआ। तो ऐसे बताने लगा। तो बलराम ने बोला, चलो कृष्ण बाद में होगा, चलो अब काफी लेट हो गए हैं, गाय को लेके वन में जाना है। तब कृष्ण ने जल्दी जल्दी उठ गया तो देखा माँ यशोदा। तो माँ यशोदा के देखकर कृष्ण बताया, माँ तुम क्या बहुत हम पर बहुत गुस्सा हो गया, उसके लिए तुम बात नहीं कर रही हो? तो बलराम उसको खींचा, कृष्ण आ जाओ, चलो देरी हो गए, सब ग्वाल बाल सब प्रतीक्षा कर रहा है, तुम इतना देर तक सो रहा आज। तब ऐसे कृष्ण फिर देखा राधा रानी को, जब देखा तब कृष्ण अपने आप को संवरण नहीं कर पाया, उनके पास जाकर राधा रानी को आलिंगन किया और बताने लगा, प्राणेश्वरी, मेरे प्राण की ईश्वरी हो तुम क्यों गुस्सा के मारे मेरे साथ बात नहीं कर रही। तब बलराम भी उनको वहां से ले लिया। तब उस पार में द्वारका का देखकर और समुद्र को कृष्ण ने सोचा ये जमुना होगा, और बलराम को पूछा, बलराम उस पार में ये नगरी कब बना है, मैं तो पहले देखा नहीं। तब बलराम कृष्ण को बताया, कृष्ण होश में आओ, देखो असुरों ने तुम्हारा भक्त पांडवों को उत्पीड़न करने के लिए प्रस्तुति कर रहा है। तब कृष्ण ने बोला, कौन कौन मेरा भक्त को ऊपर अत्याचार करेगा, चलो मैं अभी उसको खत्म कर दूंगा। तो ये कहते हुए कृष्ण को वीर रस के माध्यम द्वारका भाव का प्रकाश हुआ। तो ऐसे नारद मुनि को पता चला कौन भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, कि जिनके लिए वृंदावन के ब्रजवासी जो हैं, वृंदावन के जो भक्त हैं वही श्रेष्ठ भक्त हैं, और जिसके कारण कृष्ण का मन हर समय वृंदावन में ही रहता है, यद्यपि उनका शरीर द्वारका में होते हुए भी उनका मन, उनका चेतना हर समय वृंदावन में ही रहता है, और वृंदावन के भक्तों के साथ भगवान का जो संपर्क, वो संपर्क और कहीं भी नहीं दर्शन होता है। और सारे ब्रजवासियों में से श्रीमती राधा रानी के साथ जो कृष्ण का जो संपर्क है वही है सबसे गहरा, सबसे श्रेष्ठ, और राधा रानी ही है श्री कृष्ण का परम कृपा प्राप्त, तो जिनको कृष्ण स्वयं प्राणेश्वरी के रूप में वर्णन किए। तो ऐसे नारद मुनि क्रम अनुसार भक्ति के विस्तार और भक्ति का गांभीर्य वर्णन किए हैं। तो ये संक्षिप्त रूप में मैं ये 7 अध्याय का वर्णन किया, जो बृहद भागवतमृतम का उत्तर विभाग का विषय है। तो कल हम और थोड़ा विस्तृत रूप से इसका विचार करने का कोशिश करूंगा, आज तो मैं संक्षिप्त रूप से, थोड़ा बहुत विस्तृत रूप से प्रपंचातीत तक, मतलब शिवजी तक हुआ है, परंतु उसके पश्चात जो है वो हम काल विचार करके हम ये बृहद भागवतमृतम का जो विषय है उसका थोड़ा कुछ दिग्दर्शन करने का कोशिश कर रहा हूं। और मैं पहले भी बताया था इसका उद्देश्य क्या है, बृहद भागवतमृतम, श्रीमद् भागवतम का असल तत्व क्या है उसका ही वर्णन यहां हो रहा है, और इस सेमिनार का उद्देश्य है बृहद भागवतमृतम के प्रति, मतलब श्रीमद् भागवतम के प्रति आपको ले जाना। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री श्री बृहद भागवतामृतम की, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी को?
उद्धव जी के पास पहुंचे नारद जी, वहां से फिर कुछ आगे?
हाँ,
उद्धव जी का कोई वर्णन नहीं हुआ?
हाँ, उद्धव जी का वर्णन है, वो कल बताएंगे हम। हाँ, आज तो संक्षेप में ये किया। हाँ, उद्धव जी का जब बारे में बताया, पर उद्धव जी के दर्शन करने के पश्चात कृष्ण का स्थिति देखकर नारद मुनि को पता चला कि उद्धव के भी आगे बढ़कर है ब्रजवासियों का स्थिति। हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा था। हाँ, ये कल हाँ, विशेष रूप से हम इसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। इसका रचयिता सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी कौन है? हाँ हाँ, सनातन गोस्वामी एक मंजरी है वृंदावन का। हाँ, और इसके अलावा ये भी हमें हमें याद रखना चाहिए कि सनातन गोस्वामी जैसे महात्मा को महात्मा त्रिकालदर्शी है। हाँ, उनको तीन काल अतीत वर्तमान और भविष्य का दर्शन होता है। हाँ, तो अतीत में जो हुआ है उसके बारे में जरूर उनको पता है। हाँ, और ये जो सनातन गोस्वामी जो लिख रहे हैं ये केवल कहानी नहीं है, ये उन्हें दर्शन करके इसका वर्णन कर रहे हैं। हाँ नहीं, हो जरूर हो सकता है, जैसे इंद्र ने भक्त बना है, ब्रह्मा जी भक्त बने हैं। परंतु ऐसे स्वाभाविक स्थिति में प्रभावशाली व्यक्ति का भौतिक जगत का इतना कुछ कुछ फैसिलिटीज मिलता है कि उनके लिए भक्त बनना थोड़ा कठिन होता है। परंतु जो भाग्यशाली है वो जरूर भक्त बन सकते हैं। हाँ, हाँ, साधारण रूप से मनुष्य का तो वृत्ति वैसा होता है ना, जब कुछ मिलता है तो भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, और भगवान को भूल जाते हैं, और जब कठिनाई आती है तब हाँ भगवान को याद करता है। तो इसीलिए हाँ, जो प्रभावशाली या संपत्तिशाली व्यक्ति जो हैं, उनके लिए भक्त बनना कठिन होता है। हाँ, क्योंकि उनको पार्टी में जाना है, डिस्को में जाना है। हाँ, ये कुछ करना है, और भगवान के चिंतन करने का समय कहाँ है, या मंदिर में आने का समय कहाँ है ना, ऐसा होता है। हाँ, तो परंतु जो हाँ, भाग्यशाली हैं उसको जब भगवान के बारे में जब याद आता है और भगवान का महिमा जब उन्होंने उपलब्ध कर लेते हैं, तब पता चलता है कि इस भौतिक जगत का जो कुछ है ये एकदम तुच्छ है, और असल जो संपदा है वो है भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से ही वो संपदा मिलता है। तो ये सब ऐसा नहीं कि प्रभावशाली व्यक्ति भगवान भक्त नहीं बन सकता है, परंतु मेरा कहना ये था कि जब प्रभावशाली व्यक्ति भक्त बनता है तब हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो ऐसे फलाना व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया है। मामूली व्यक्ति भगवान का जब भक्त बनता है तो कोई कुछ नहीं सोचता है, परंतु कोई प्रभावशाली व्यक्ति जब कुछ बनता है तब ये होता है, उसको सब उसको नोटिस लेते हैं। हरे कृष्ण। परंतु असल बात तो ये है कि सबसे प्रभावशाली है भगवान का भक्त। जो भगवान का भक्त बनता है वही सबसे प्रभावशाली बनता है। देखो इस जगत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति सबसे प्रभावशाली है वो सब भगवान का भक्त है। जैसे इंद्र या स्वर्गलोक का जो देवताएं हैं वो सब भगवान का भक्त है ना। ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी भी भगवान का भक्त है ना। तो असल में भगवान का भक्त बनने से ही सबसे प्रभावशाली हम बन सकते हैं। नहीं तो हम सब मामूली हैं, मतलब मृत्यु के पश्चात कोई याद नहीं। आज देखो जो सब बहुत बहुत धनी व्यक्ति हैं, जैसे बिल गेट्स, आज सबसे धनी वो है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स देखो, आज बिल गेट्स के पास कुछ रुपए हैं तो सब बिल गेट्स को याद करता है, परंतु बिल गेट्स का जब मृत्यु होगा तब वो क्या एक पैसा भी अपना साथ ले सकेगा मृत्यु के पश्चात? और मृत्यु के पश्चात अगर उसका जन्म हुआ फिर हाँ, और बैंक में आकर अगर वो बोलेगा कि मैं पूर्व जन्म में इतना रुपया रख गया था तो उसको वापस दो, बैंक है उसका वापस देगा नहीं। तो ऐसे देखो इस भौतिक जगत का जो संपदा है वो तुच्छ है, उसका मूल्य केवल जब तक हम यहां हैं तब तक ही है, उसके पश्चात इसका कोई मूल्य नहीं रहता है। परंतु भक्ति का जो भक्ति जो है वो हमारे साथ हर समय रहेगा। ये भक्ति संपद जो है वो मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहेगा। और बात यह है कि मृत्यु के पश्चात हम रहेंगे और भक्ति भी हमारे साथ रहेगा। मृत्यु के पश्चात हम रहेंगे ना, ना क्या मृत्यु में ही सब खत्म हो जाएगा? तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, आत्मा रहेगा। तुम कौन हो? हाँ, शरीर हो? हाँ, क्योंकि भक्ति जो है ये भौतिक नहीं है, भक्ति आध्यात्मिक है। भक्ति का जो क्रिया वो शरीर में नहीं और मन में भी नहीं, वो आत्मा में है। उसके कारण आत्मा के साथ भक्ति रह जाता है। भगवान के साथ हमारा जो संपर्क, वो संपर्क तो शरीर का नहीं है, मन का नहीं है, तो किसका है? आत्मा का है। तो वो संपर्क आत्मा के साथ रहेगा। मृत्यु के पश्चात शरीर नहीं रहेगा परंतु आत्मा रहेगा, अर्थात वो भी भक्ति भी रहेगा। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात। हाँ, स्वर्गलोक के देवताओं ने क्यों मर्त्यलोक में आना चाहते हैं? गायंती देवा किल गीत कानी धन्नास्तु ये भारत भूमि। स्वर्ग की देवताओं ने भी भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि अगर थोड़ा कुछ पुण्य रह गया है तो उस पुण्य के प्रभाव से हमें भारत भूमि में जन्म दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में जन्म होने से भगवत भक्ति मिलता है। भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए उन्होंने मर्त्यलोक में आना चाहते। स्वर्ग में भक्ति मिलना मुश्किल है। स्वर्ग सुख का महत्व तो जैसे शरीर का जो सुख है वो उसका महत्व तो जैसा है ना? स्वर्गलोक कहाँ है? भौतिक जगत में है ना? स्वर्गलोक कहाँ है? भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में? हाँ नहीं, स्वर्गलोक भूर भुवस्व मह जन तप सत्य। तो ये कहाँ? ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में है, अर्थात भौतिक जगत।